جسم کے اندر ہماری صرف چار پانچ چیزیں تو نہیں ہیں، اللہ کی جو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ چار پانچ ہی تو نہیں ہیں، وہ تو سینکڑوں ہیں، وہ تو بے شمار ہیں. بزرگان دین نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہم کو دین کا دین سکھایا، دین سمجھایا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاد اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے واسطے جب وہ بیمار ہوئے تھے تو مزاج کرسی کے لیے گئے، ان کو بخار آیا ہوا تھا، جا کر پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے. حضرت اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، الحمد للہ، سر میں کوئی درد نہیں، آنکھ میں کوئی درد نہیں ہے، کان میں کوئی درد نہیں ہے، دانت میں داڑھ میں کوئی درد نہیں ہے. تو بہت سارے اعضاء گن ہیں جس کے اندر اللہ کا کوئی اللہ پاک نے ان کو آزمایا یعنی مصیبت نہیں ڈالی، اور بخار کا کوئی ذکر نہیں، جو بیماری ہے اس کا کوئی ذکر نہیں. وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک مصیبت آئی ہے تو ہزاروں مصیبت، ایک مصیبت تو آئی ہے لیکن ہزاروں مصیبتوں سے، لاکھوں مصیبتوں سے ہم نجات ہیں. اس وجہ سے اللہ کا شکر ہم پر ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ خوشگوار حالت ہو تب بھی، ناگوار حالت ہو تب بھی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں یہ واقعات ہم کو قرآن کریم کے اندر بکثرت ملتے ہیں، احادیث شریفہ میں یہ چیزیں بکثرت ملتی ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس سلسلے میں خاص طور پر قابل ذکر ہے. ان کے ساتھ ایسے واقعات جو ان کے آزمائش کے ہیں ان کے بچپن سے شروع ہو گئے. بھائیوں کے ساتھ میں حسد کا معاملہ ہے، دیکھیے یہی یہ وہ واقعات ہیں جو ہر انسان کے ساتھ کے کسی نہ ہر کسی کے ساتھ کسی نہ کسی دور اور ماحول میں، زندگی کے کسی نہ کسی عرصے میں پیش آتے رہتے ہیں. قرآن کریم اس کو مختلف موقعوں سے ذکر کر کے کہتا ہے کہ دیکھو سبق لینے کی چیز یہ ہے، سمجھنے کی چیز یہ ہے، یہاں سے تم اپنی حالت کا، اپنی سچویشن کا حل ڈھونڈو، یہاں سے تم اسلامی تعلیم اور اسلامی منشے کو، اسلام کے منشے کو، اللہ کے منشے کو سمجھو اور اس پر عمل پیرا ہو، اس کے پابند ہو کے چلو. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں چھوٹے رہنے سے لے کر ان کے نبوت کے بعد تک کے واقعات میں مستقل آزمائش ہے. بھائیوں کی طرف سے ان کو حسد، بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کو گھر سے نکالا، والد سے دور کیا، کنویں میں لے جا کر کے پھینک دیا. کوشش تو یہ تھی کہ ان کو قتل ہی کر ڈالیں، لیکن پھر سوچا، آخر میں یہ رائے ہوئی کہ کسی طرح سے اگر یہ ہم سے دور ہو جائے، ہمارے گھر سے دور ہو جائے، ابا سے دور ہو جائے تو بس ہمیں اتنا کافی ہے، لہٰذا لے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالنے کے بعد وہاں سے قافلے والوں نے اٹھا کر کے ان کو بیچ ڈالا. ایک ایک مرحلہ اس سفر کا اور اس داستان کا اور اس قصے کا وہ آزمائشوں سے بھرا ہوا. بھائیوں کا حسد، گھر سے نکلنا، ابا سے دور ہونا، امی سے دور ہونا، اور کنویں میں جانا، پھر غلام بن کر فروخت کیا جانا، پھر اس کے بعد وہاں عزیز مصر کے پاس، مصر کے بادشاہ کے پاس میں جوان ہو کر اس کی بیوی کی آزمائش اور پتروں کے کا شکار بننا، ایک ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ ان کی طرف سے کوششیں ہونا اور ان کوششوں سے نکلنا. ان سارے واقعات کے اندر جوانی کا جو قصہ ان کا ہے زلیخا کے ساتھ میں، اس کے اندر بھی زلیخا نے کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کے واسطے پوری کوشش کی اور اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا. زلیخا نے دروازے سارے بند کر دیے اور تنہائی تھی اور خلوت تھی، دونوں کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا، تب بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاگ کر کہ میں، ان کو پتا ہے کہ دروازے بند ہیں، پھر بھی بھاگ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اللہ نے دروازے کھول دیے موجودہ تک کرامتن. اس کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد پھر زلیخا نے کہا کہ اس مرتبہ تو میں نے ٹرائی کیا تھا اور وہ بچ نکلا ہے، آئندہ اگر یہ ایسا کرے گا، یعنی میری خواہش کو، میری فرمائش کو پوری نہیں کرے گا تو میں اس کو جیل بھجواؤں گی. یہ وہ اپنی ساتھیوں سے کہہ رہی ہے، مصر کے اس کی دوست کی تو اپنی دوستوں سے، سہیلیوں سے کہہ رہی ہے زلیخا، اس مرتبہ تو یہ بچ نکلا، آئندہ پھر میں ٹرائی کروں گی اور اس وقت اگر یہ بچ نکلے گا یا پھر بچنے کی کوشش کرے گا تو پھر میں اسے جیل میں بھیج دوں گی. ادھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال، یہ فرما رہے ہیں تب بھی احب الی، شریف یاد نہیں، یعنی مضمون اس کا یہ ہے کہ یا اللہ جس چیز کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے نا، جس گناہ کی، جس نافرمانی کی مجھے دعوت دے رہی ہے، اس گناہ سے مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے. اس موقع سے بھی یہ اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد وہاں پر مصر کے بادشاہ جیل خانہ گئے، جیل خانہ بھجائے گئے، بھجائے جانے کے بعد چند سالوں تک وہیں پر رہے، پھر وہاں سے کسی مصلحت، کسی واقعے کے تحت میں اور اس کے ذمن میں وہاں سے ان کا نکلنا ہوا، اللہ پاک نے ان کو جیل سے نکلوایا اور پھر مصر کے خزانوں کا ان کو بادشاہ بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا. وہاں سے نکلنے کے بعد مصر کے خزانوں کے بادشاہ جب بنے اور قحط پڑا اور ان کے بھائی بھی اس قحط کے سال میں ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ان کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ باقی بھائی آئے تھے، حضرت یوسف کے وہ چھوٹے بھائی بنیامین نہیں آئے تھے. उन्होंने कहा कि बिन्यामीन को हमारे बाप ने साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनको अपने एक बेटे के बारे में इससे पहले तलख तजर्बा हो चुका है इसकी वजह से। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आइंदा जब तुम्हें गल्ला लेना होगा तो साथ लेकर आना होगा। तो दोबारा जब वो गए तो हज़रत बिन्यामीन को साथ लेकर गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक तदबीर सुझाई, उन्होंने अपने भाई को, छोटे भाई को अपने पास रख लिया। वो तदबीर जो हुई थी, वाकया जो हुआ था, उस वाकये के अंदर हज़रत यूसुफ के और वहां के खजाने का जो नापने का जो पैमाना था, उस पैमाने को गायब कर देने का और उसको चुराने का या उसको छुपा लेने का जो वाकया पेश आया था, और उसको बनाकर बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रुका लिया था, उस वाकये के अंदर भी एक बड़ी आजमाइश थी। हुआ ये कि बिन्यामीन के कंधे में और उनके सामान में वो पैमाना रख दिया गया, और जब इधर से वो लोग काफिले के साथ जाने लगे, भाई वैसे बिन्यामीन को लेकर जाने लगे, तो उधर से लोगों ने कहा कि भाई देखो, हम हमारा पैमाना, हमारा सुहा जो है वो गुम पाते हैं, हमें नजर नहीं आ रहा है, नहीं तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम चोर हो। उन्होंने कहा कि हम चोरी करने तो यहाँ आए नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि फिर क्या करें, कहते तफ्तीश तो करनी पड़ेगी। तो कहा कि कर लो तफ्तीश, अगर सजा क्या होगी। कहा कि जिसके पास से वो पैमाना निकलेगा वो हमारे पास रख लिया जाएगा, हमारे यहाँ का यही तरीकेकार है, सजा हम इसे अंदाज की देते हैं। आखिर सबसे पहले दूसरे भाइयों के सामान में उसको तलाश किया गया, वहां से नहीं निकला। फिर बिन्यामीन के सामान में उसको तलाश किया गया तो वो वहां से निकल गया। इस वक्त में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, चूंकि उनको तो पता नहीं है कि सामने हजरत यूसुफ है, तो वो कह रहे हैं कि अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इस मौके से भी यही कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इसने चोरी की है, इसके सामान में से अगर ये चीज आपका सामान निकला है तो ये चोर, इससे ये साबित हुआ कि ये चोर है, और ये चोर है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी, ये किस कदर तकलीफ का बात। आखिर क्या, फिर जब अल्लाह पाक ने उन दोनों, उन सबको मिला दिया, उन सबको इकट्ठा कर दिया, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म हुआ तो राज का इंकशाफ फरमा दिया, और वालिदैन के साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को और उनकी अहलिया को सारे भाई मिलकर के मिस्र आ गए। तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, उस वक्त फरमा रहे अपने अब्बा को खिताब करके कि अब्बाजान, मैंने जो ख्वाब शुरू में देखा था कि मैं 11 सितारों को देख रहा हूँ, चांद सूरज को देख रहा हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं, तो उसके अंदर भाई जब हजरत यूसुफ के पास मिस्र में दाखिल हुए वालदैन के साथ, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालदैन को तो तख्त पर मकाम दे दिया, जगह दे दी, भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। सजदे ताज़ीमी उनका उनका जो था, जो अब तक के वाकयात हुए थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको छेलते हुए आखिरकार उनको ला तस्रीब अलैकुम उल्यौम कहते हुए माफ कर दिया था, उसके उससे उस जज्बे से मुतासिर होकर उन्होंने वो सजदे ताज़ीमी को जलाया था। अब यहाँ इस वाक़े को जिक्र करते हुए तो यूसुफ फरमाते हैं कि अब्बा जान, ये है वो ख्वाब की ताबीर जो मैंने बचपन में देखा था, कि 11 सितारे हैं जो मुझे सजदा कर रहे हैं और चांद सूरज हैं जो आप दोनों हैं। उसके बाद कहा कि वक़द अहसन अभी अखरजनी मिन सिजन, कि अल्लाह पाक ने मुझे जेल से निकाला, जेल में ले जाने का तज़किरा नहीं, हालांकि ले जाने वाले भी अल्लाह ही हैं और निकालने वाले भी अल्लाह ही हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ बुराई का इंतसाब बुराई की निस्बत नहीं की जा रही। फरमाने वक़्त अहसन अभी, अल्लाह ने मेरे साथ एहसान किया, इस अखरजनी मिन सिजन, कि अल्लाह ने मुझे जेल से निकाला, वजह अभी तुम मिनल बज़ मिन बाद नज़र शैतान बैनी व बैन इख्वती, मुझे आप लोगों से बिछड़वा दिया था, अलग कर दिया था, दूर कर दिया था, अब अल्लाह पाक ने आप लोगों को यहाँ लाकर हमको फिर से मिला दिया। यहाँ पर जिक्र करने का मौका है, मिलकर रो रहे हैं, तो ये मौका उमर, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि बुराइयों का जिक्र करते हैं, जो मुसीबत आई है उसका जिक्र करते हैं, लेकिन वहां पर क्या क्या कहा जा रहा है, जो मुसीबत गुजर चुकी है उसका कोई तस्करा नहीं है, अल्लाह ने बाद में जिन एहसानात नेमतों से नवाजा है उनका तस्करा है। वो ये नहीं फरमा रहे कि मुझे अलग कर दिया था, दूर कर दिया था, हम लोगों को बिछड़वा दिया था, ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अब मिला दिया। अच्छा, तो भाइयों के हसद को उसमें दखल था, तो उसकी तरफ भी उनकी नस्बत और हसद की नस्बत भी भाइयों की तरफ नहीं करते, कहते हैं कि मिम्बा या नजर शैतान बैनी व बैन इख्वती, शैतान ने मेरे और भाइयों के मामले में थोड़ा सा फसाद डाल दिया था, इस वजह से हमारे बीच ये मामला पेश आया। अतः यूसुफ अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी के सारे वाकयात के अंदर ये चीजें मिलती हैं। तो शुक्र का जज्बा इस कदर मजबूत रहना, अंबिया ने अपनी जिंदगी से, अपने अमल से इसका सबक दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटों से तकलीफ पहुंची, ऐसी तकलीफ पहुंची, सबसे पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे अलग किया, सबसे चहीते बेटे थे, और छोटी कहानी उनको बना के बना ली और फिर उनको आकर बता दी, उसको भी वो झेल गए। फिर उसके बाद बिन्यामीन भी उनसे दूसरे बेटे थे, हजरत यूसुफ के बाद जो महबूब थे, वो उनसे जुदा कर दिए गए। उसके बाद जो तीसरा बेटा सबसे बड़ा था, वो दोनों की जुदाई की वजह से बाप का मुंह देखने के अपने आप को काबिल नहीं पाकर वो भी वहीं गांव के अंदर रह गया था, तो उसकी जुदाई को उन्होंने बर्दाश्त किया। और इन सब की जुदाई को बिलखसूस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अलहदगी से वो इस कदर दिल बर्दाश्त थे कि रो रोकर उनकी बीनाई चली गई। बेटों ने जब आखिरकार हाल जब उनके सामने खुल गया तो कहा कि सौफ़ास्तग़फ़िरु मैं अल्लाह से तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, बेशक वो बख्शने वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम पर भी सब्र का मरहला आया, उन्होंने उस मौके पर भी शुक्र किया, इन्नमा अश्कु बस्सी वहुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर भी इस किस्म के वाक़िआत आपकी जिंदगी का वो जिंदगी देने वाले अल्लाह, मौत देने वाले अल्लाह, खिलाने वाले अल्लाह, पिलाने वाले अल्लाह, बीमारी देने वाले अल्लाह और बीमारी से शिफा देने वाले अल्लाह। जिक्र इसको किस अंदाज में करते हैं कि अल्लाह पाक ने अल्लाह जिंदगी देता है, अल्लाह मौत देता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, लेकिन जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। यहाँ पर भी मौका बीमारी देने वाले कौन? अल्लाह है। शिफा देने वाले कौन? अल्लाह है। कहा जाए कि अल्लाह ने बीमारी दी और अल्लाह ने शिफा दी तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिनके रुतबे बुलंद होते हैं तो फिर उन लोगों के लिए अल्लाह के साथ मुआमलात, ताल्लुकात और अदब के तकाजे भी और जुदा होते हैं, फिर वो उसका लिहाज करते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जो कहा ना कि वइदा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, इसमें यही अदब अल्लाह के साथ सिखाया गया कि बुराई की नस्बत को, ऐसी चीज़ों की जिसकी नस्बत तुम बज़ाहिर जिन बातों को तुम अच्छा महसूस नहीं करते हो उनकी नस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करनी है, यही सबक इसके अंदर दिया गया। तो शुक्र का जो हुक्म है ये हुक्म बज़ाहिर हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ खुशगवार हालात में ही, ये नेमतों के माहौल में ही, ये आसाइशों के अंदर ही हमको इसका हुक्म है, नहीं। जब मुसीबतें आ रही हों, परेशानियां हम पर पड़ रही हों, मुसीबतों में हम घिरे हुए हों, बीमारियां हमको लाहक हों, किसी भी चीज की तकलीफ परेशानी और गम हमको लाहक है, उस वक्त भी वो मौका भी शुक्र का ही मौका है। ये चीज असल में समझने की, शुक्र क्या है? शुक्र का नाम है एक मुनइमे नियामतों को, राहतों को मुनइमे हकीकी की तरफ से समझना, अल्लाह की तरफ से समझना, जो हकीकत में इनाम देने वाले, उस आसाइश के देने वाले, वो इनाम करने वाले, नियामत बख्शने वाले, उस नियामत को उनकी तरफ से समझना कि अल्लाह की तरफ से आई। फिर उसके बाद उस नियामत का सही इस्तेमाल करना, ये इसका ताल्लुक इल्म से होता है। ये नियामत है, आसाइश है, ये तो हम सब जानते हैं कि इससे हमें राहत पहुंच रही है, ये नियामत है, लेकिन उस नियामत का सही इस्तेमाल करना। हमारे जिस्म में जितनी चीजें, जितनी मशीनें अल्लाह ने लगाई हैं, उन सब मशीनों का अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल, ये शुक्र की हकीकत है। और उसके बाद उसके अलावा, उस नेमत के अलावा भी अपने मुहसिन हकीकी की नाराजगी से बचने का हमेशा ख्याल रखना और एहतियात करते रहना, ये है शुक्र की हकीकत। जबान से शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह का शुक्र है कहना, ये भी शुक्र का एक दर्जा है, लेकिन सिर्फ सही दर्जा है। जैसे कोई बादाम खरीदने के लिए जाए और घर आकर जब वो देखे और उसके अंदर सिर्फ छिलके ही छिलके नजर आए, तो वो कहता है कि बादाम तो मिले नहीं, तो बादाम खरीद कर लाए थे, बादाम ही घर आए हैं, तो फिर वो क्यों कह रहा है कि बादाम, बादाम के छिलके मौजूद है तो बादाम नहीं है? इसलिए कि उसका मग़्ज़ नहीं, उसके माना नहीं, उसकी हकीकत नहीं है, गुर्दा नहीं है, इसीलिए उसको कहा गया कि ये हकीकत में बादाम नहीं। ऐसा ही शुक्र का एक जाहिरी अल्फाज होते हैं और एक शुक्र की हकीकत और उसके माना होते हैं। अल्फाज भी हमसे मतलूब है, कहा गया कि अल्लाह का जबान से शुक्रिया अदा करते रहा करो, और माना हकीकत में मतलूब है, कि अल्फाज से बढ़कर हकीकत में उसके माना मंसूब है। अगर कोई जबान से नहीं कहता है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन नाशुक्री भी जबान से नहीं करता है और अल्लाह की नेमतों का सही माना में और मुनइमे हकीकी का एहसान जानकर उनका सही इस्तेमाल करता है, तो वो शाकिर बनता है, वो शुक्र गुजार बनता है। शुक्र पर जो वादे और अजर के जो वादे आए हैं, उन सब का वो मुस्तहिक है। सबसे बड़ी नेमत इस दुनिया की क्या है? इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है वो नेमत जो अल्लाह पाक ने हम लोगों को हमारे मांगे बगैर दे दी है, और वही ईमान की नेमत। सब लोगों को इसका तो एहसास है कि हमारा अंजाम बखैर हो जाए, हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए, हम कलमा कहने की हालत में हमारी वफात हो जाए, इस दुनिया से हमारी जुदाई हो जाए, फुरकत हो जाए। लेकिन इसकी फिक्र नहीं है कि इस नेमत को तरक्की कैसे दी जाए, इस नेमत का सही माना में शुक्रिया कैसे अदा किया जाए। सब ये चाहते हैं कि खातिमा ईमान पे हो। लबा फरमाते हैं अगर तुम शुक्र करोगे तो नेमत में तरक्की होगी, लेकिन शुक्र तुम लजीदन्नकुम। तो हम लोगों को सिर्फ खातिमे का तो एहसास है, लेकिन इस दुनिया के अंदर रहते हुए इस नेमत में तरक्की का एहसास नहीं। ایمان پر شکریہ کیا جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے. اگر اس کے بغیر کوئی اس دنیا سے گیا تو اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی, اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد میں کفر سے اس قدر نفرت ہونی چاہیے جس قدر کسی کو نفرت آگ میں زندہ جلائے جانے سے ہوتی ہے. آگ میں زندہ جلائے جانا کس قدر تکلیف کا بات ہے, لیکن یہ محبوب ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں کہ آدمی سے کفر کا مطالبہ کیا جائے اور وہ اس مطالبے پر پورا اترے, وہ کافر بن جائے, عملی اعتبار سے ہو, اعتقادی اعتبار سے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو علم صحیح فہم صحیح نصیب فرمائے, شکر کی حقیقت ہم پر کھولے اور شکر کے مقامات میں اس کا استحضار نصیب فرمائے, اور اس صفت سے ہمارے دلوں کو معمول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.